उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
पूर्वोत्तर डायरी में आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई नई जानकारी। तो आधे घंटे के लिए देश के पूर्वोत्तर के हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों की ओर हम आपको लिए चलते हैं। आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को शब्दों के माध्यम से महसूस करेंगे। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, प्रकृति और लोगों के बीच आपसी प्यार और सद्भाव जहाँ की शक्ति है, ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है, जहाँ की विविध भाषाएं और बोलियाँ अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखती हैं, ऐसा पूर्वोत्तर जो अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर।
पूर्वोत्तर डायरी।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिक्किम से। सिक्किम ने बीते सप्ताह 16 मई को भारत का 22वां राज्य बनने के अवसर पर 49वां राज्य दिवस मनाया। हमारे गैंगटॉक संवाददाता दिली राम दुलाल ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुने।
सिक्किम की भारत का 22वां राज्य बनने के अवसर पर 16 मई को 49वां राज्य दिवस मनाया गया। राजधानी गांतोक के चिंतन भवन में आयोजित कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्य अतिथि के रूप में, जबकि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता और सिक्किम राज्य के पहले मुख्यमंत्री एलडी काजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं देशभक्ति गीतों से हुई। राज्य दिवस कार्यक्रम में स्वागत भाषण राज्य के मुख्य सचिव वीवी पाठक ने दिया। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में भारत के महान गणराज्य का अभिन्न अंग बनने के बाद सिक्किम की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
फॉस्टरिंग सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज एसडीजी 11 एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एसडीजी 12 एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एसडीजी 13 While it holds the 8th position in the overall ranking of states within the context of the Northeast state, Sikkim leaves behind. However, acknowledging the need for enhanced targets and improved performance remains crucial for Sikkim to emerge as a front runner and achiever on all fronts. The multi-poverty index released by Niti Aayog in 2023 positions Sikkim as the 4th lowest with Goa, Kerala and Tamil Nadu ranking ahead of it.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने कहा कि सिक्किम राज्य ने कम समय में जो प्रगति की है वह इसे भारत के सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में चिन्हित करता है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति जैसे योजनाओं और महिला केंद्रित पहलों सहित अभूतपूर्व विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिक्किम के भारत के 22वां राज्य के रूप में शामिल होने के 49वां वर्ष के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि
मित्रों, सतत विकास की दिशा में हमारी यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट होगी। गरीबी उन्मूलन, उद्योग को बढ़ावा देने, नवाचार स्थानीय समुदायों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारी पहल हमारे लोगों के समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। इसके अलावा सिक्किम के विभिन्न समुदायों को अपनी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वैदिक परंपराएं, सभी का सामंजस्यता और शांतिपूर्ण तरीके से रहना और यहाँ के सिक्किम की विशेषता बनती है। यहाँ लोग अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, औरों की भी संस्कृति का जो सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा अर्जित की है। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और अपराध न के बराबर, हमारी बेटियों का हर क्षेत्र में अग्रसर रहना, पंचायत चुनाव में 53% से अधिक सीटों पर मातृशक्ति का कब्जा एवं 53% हरी राज्य सिक्किम, यही हमारे राज्य को विलक्षण बनाती है। प्यारे मित्रों, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट अनुसार भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सिक्किम को तीसरे सबसे कम प्रतिशत गरीब आबादी का स्थान प्राप्त किया एवं राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर और उत्तर पूर्व में प्रथम रैंक हासिल किया है। विशेष रूप से गंगटोक जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तर पूर्व क्षेत्र में 103 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बनकर के उभरा।
कार्यक्रम में राजभवन द्वारा प्रकाशित हमारा संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया था।
डिपार्टमेंट हैज पब्लिश्ड अ बुकलेट टाइटल्ड हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम। द बुक एनकैप्सुलेट्स ऑल द इवेंट्स अंडर द विकसित भारत पुष्पित सिक्किम दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय राजभवन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2024। द इवेंट वाज अ ह्यूज सक्सेस ड्यू टू द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। The publishing of this booklet also commemorates the first year of Honorable Governor's tenure. Let's have a round of applause, please. May I invite the Honorable Governor and the Honorable Chief Minister and Office of Industries on the dais to the stage for the booklet's release. I request Secretary to the Honorable Governor Rajbhavan, Sri Jigmedorji Bhutia, and his team to present the booklet to the dignitaries for formal release. Let's have a big round of applause. The copies of the booklet in both English and Hindi languages shall be shared with all the state government departments and crucial ministries of government of India, state universities and schools of Sikkim. Rajbhavan appreciates the efforts of IT department in finalizing the document.
स्मरण हो कि सन 1975 में भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संवैधानिक संशोधन पारित होने के बाद सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का अभिन्न अंग बन गया। इस ऐतिहासिक घटना ने सिक्किम के भारतीय गणराज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुख्यधारा में परिवर्तन को चिन्हित किया, जिसमें लोगों द्वारा लोकतंत्र और शासन के सिद्धांतों को अपनाया गया। 16 मई 1975 को इस उद्घाटन राज्य दिवस समारोह ने भारत के विविध और जीवंत गणराज्य के अभिन्न अंग के रूप में सिक्किम के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल।
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के लोगों को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सिक्किम को प्राकृतिक सौंदर्य का वरदान मिला है जो वहां की बर्फीली चोटियों, सघन वनों और जल प्रपातों में दिखाई देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सिक्किम के लोगों ने अपनी जीवन शैली और कड़ी मेहनत से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्य और राज्यवासियों की निरंतर समृद्धि और सुदृढ़ता की कामना की है। प्रधानमंत्री ने भी सिक्किम के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य और परिश्रमी लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि विगत वर्षों में सिक्किम ने जैविक कृषि की दिशा में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस बीच सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के लिए पर्यटन जागरूकता गंतव्य विकास प्रबंधन गतिविधियां DDMA पर 2 दिवसीय कार्यशाला 15 मई को गैंगटॉक स्थित राज्य पर्यटन और विमानन विभाग के सम्मेलन कक्ष में बुलाई गई। इस कार्यशाला का आयोजन पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत गैंगटॉक जिला प्रशासन के सहयोग से किया था। इस अवसर पर अपने संबोधन में विभाग की सचिव प्रकाश छेत्री ने कहा कि पर्यटन राज्य के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया क्योंकि इससे ग्रामीण जनता जुड़ेगी और गांवों में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जैविक राज्य के रूप में सिक्किम ने पिछले कई वर्षों में काफी पर्यावरणीय उत्थान किया है। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त सचिव वंदना छेत्री और डॉक्टर प्रेरणा चामलिंग, संयुक्त निदेशक मिक्षा ताशु लेपचा, उप निदेशक निर्मल सेंटूरी, सहायक निदेशक आईटी सर्जना प्रधान, उप निदेशक मनोज कुमार छेत्री, परियोजना समन्वयक यांगचिन टोंगडिंग लेपचा, परियोजन समन्वयक सुखमा ताम्फा लीमा और राज्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और होटल प्रबंधन संस्थान संजोग में व्याख्याता इंदिरा सिंह ने भी कार्यशाला में हिस्सा लिया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट टीम PDMC राज्य के साथ साझेदारी में पर्यटन संवर्धन गतिविधियों पर काम कर रही है। स्वदेश दर्शन के दूसरे चरण के अंतर्गत सिक्किम में दो नई परियोजनाएं नामली के गैंगटॉक सांस्कृतिक गांव और युक्सोम क्लस्टर ग्यालशिंग में इको वेलनेस शुरू की है। और अब हम आपको पूर्वोत्तर के सुंदर से अरुणाचल प्रदेश की ओर लिए चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सियांग बायोडायवर्सिटी मीट 2024 का पहला संस्करण ऊपरी सियांग जिले में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता राकेश डोले ने ईटानगर से हमें बताया कि सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बनना, सामूहिक रूप से प्रेरित करना और साझेदारी बनाना है जो प्रतिष्ठित हिमालयी परिदृश्य में संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन के भविष्य को आकार देने में सफल होगा।
Nestled in the northern corner of India, Arunachal Pradesh is a land of breathtaking landscapes, rich cultural diversity and unparalleled biodiversity. Its diverse topography ranging from snow-capped mountains to lush tropical forests makes it a potential biodiversity hotspot. Having said that, Arunachal Pradesh is also facing numerous conservation challenges including habitat loss, poaching and climate change.
अरुणाचल प्रदेश लुभावने परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और अद्वितीय जैव विविधता की भूमि है। इसकी विविध तरह की स्थल आकृति, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों तक इसे एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट तो बनाती ही है। ऐसा कहने के बाद अरुणाचल प्रदेश को अगर अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन सहित कई तरह की संरक्षण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो ये तो स्वीकार करना होगा। इन खतरों को कम करने के लिए सामुदायिक सहयोग से विभिन्न संगठन संरक्षण उपायों के माध्यम से पहल कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के गोबुक गाँव में आयोजित पहला सियांग जैव विविधता सप्ताह उनमें से एक है। 12 मई को शुरू हुआ सप्ताह भर का ये उत्सव इस महीने की 18 तारीख को समाप्त हुआ और गोबुक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एपम सीरम वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से तितली ट्रस्ट और मॉलिंग नेशनल पार्क सह वन्य जीव प्रभाग के सहयोग से इसे आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि अकेले ऊपरी सियांग जिले में हाल के वर्षों में पतंगों की 10 नई प्रजातियों की खोज की गई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका ट्रॉपिकल लेपिडोप्टेरा रिसर्च में प्रकाशित किया गया था।
This discovery of new species opened the door for the first Siang Biodiversity Meet in the district. Dovum Taksing, president of Gobuk Welfare Society, one of the organizers of the meet, said that this festival not only helps the conservation of the forest areas and the biodiversity, it is also helping the locals from economical point of view.
नई प्रजातियों की इन खोजों ने जिले में सियांग जैव विविधता सम्मेलन का मानो द्वार खोल दिया है। आयोजकों में से एक गोबुक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डबोम ताक्सिंग ने कहा कि ये महोत्सव न केवल वन्य क्षेत्रों और जैव विविधता के संरक्षण में मदद करता है बल्कि ये स्थानीय लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से भी मदद कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जैव विविधता सप्ताह इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उनके गोबुक गांव समुदाय के सदस्यों के उत्साह का भी परिणाम है।
हमारा बस्ती का जो वासी है वो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ पीपल वांटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एज वी हैव सिट मेनी डिस्कशंस एंड मीटिंग, उससे हम लोग को बढ़ावा मिलता है। मेजोरिटी ऑफ पीपल माने सपोर्ट कर रहा है तो क्यों ना हम लोग कंजर्वेशन में जुड़े रहे। सिंस लास्ट मेनी ईयर्स as we discussed, we want to make this event as community calendar event. We want to celebrate this meet every year. Definitely, we will continue advancing biodiversity conservation in our village and this region.
This unique community-led week-long event has drawn 25 nature enthusiasts and conservationists from across the nation and the world to explore the pristine landscape and biodiversity of Upper Siang District. This is Rakesh Dole, Akashwari News, Itanagar.
और अब हम आपको त्योहारों की भूमि नागालैंड से एक लोक कथा के बारे में बताते हैं। नागालैंड की जनजातीय सांस्कृतिक पारंपरिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और प्रथाओं का एक समृद्ध और विविध मिश्रण है जो नागालैंड के लोगों को बनाने वाली विभिन्न जनजातियों से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम नागालैंड के लॉन्गलेग जिले में जाते हैं और स्टोन गॉड या जिसे स्थानीय बोली में कहते हैं वेटिंग योंग, जिसका अर्थ है वो पत्थर जिसने दुश्मनों को भगाया। तो हम इसकी रोचक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के शुरू के भाग में पूर्वी हिस्से से बड़ी संख्या में लड़ाके आते थे जिन्हें फामा कहा जाता था। उन्होंने लांगलेंग जिले के अंतर्गत एक छोटे से गाँव तांगा को बर्बाद करने की मंशा से उसे घेर लिया था। पश्चिम में गांव का द्वार था, वहां दुश्मन ने गांव में घुसने और हमला करने की कोशिश की। अब यहां एक दूसरे से सटे तीन विशाल पत्थर दिखाई देते हैं जिन्हें कहा जाता है योंगशा योंगशु।
In an attempt to ward off the intruding enemies, a warrior by the name of Konglung threw his spears through a hole in the village main wooden gate, which pierced through a badly injured armed warrior who was at the front gate while they were trying to break open the village gate and fencing.
घुसपैठ करने वाले दुश्मनों से बचने के प्रयास में कोमलिंग नाम के एक योद्धा ने गांव के मुख्य लकड़ी के दरवाजे में एक छेद के माध्यम से अपना भाला भीतर फेंक दिया, जो सामने के दरवाजे पर मौजूद बुरी तरह से घायल एक सशस्त्र योद्धा को भेद गया।
As a result, they ran helter skelter for their lives. In the process of their scurried running in all directions, many of them were injured by their own weapons, while some fell into deep rocky gorge below the village gate and died.
दुश्मन चौंक गए और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सभी दिशाओं में तेजी से भागने की प्रक्रिया में उनमें से कई अपने ही हथियारों से घायल हो गए, जबकि कुछ गांव के गेट के नीचे गहरी चट्टानी घाटियों में गिर गए और मर गए। सभी दुश्मन महाचिंकांगशुंग, शिशी लेमचुंग और पोंगचिंगशुंग की ओर वाली दिशा से भाग गए और इसके नाम का लोग आज भी स्मरण करते हैं।
The enemies all ran to the directions of Manchinkangshung, Shishi Lamchung and Pongchingshung, the name of which are still used by the people today.
तांगा गांव के योद्धाओं ने दुश्मनों का पीछा किया और उनमें से कई को मार डाला।
Warriors of Tanga village chased the enemies and killed many of them. Killings continued till the next day on those who were in hiding, who were weak, injured and left behind.
पत्थर की पटिया और फल का पेड़ दोनों आज भी एक जीवित गवाह के रूप में खड़े हैं। ऐसी मान्यता है कि बड़ी संख्या में आए हथियारबंद शत्रुओं पर उस दिन की ऐतिहासिक विजय वास्तव में उन तीन पत्थरों की अप्राकृतिक और भयावह ध्वनि के रूप में कोई या तो देवीय हस्तक्षेप था या उसे कृपा भी कहा जा सकता है। लोगों का मानना है कि ये उसी से प्राप्त हुई थी और इसी वजह से आक्रमणकारी शत्रुओं को खदेड़ना संभव हो सका था।
Both the stone slab and the fruit trees still stand today as a living witness and the particular spot came to be called the heart of Akanman.
तभी से उन विशेष पत्थरों को स्थानीय बोली में स्टोन गॉड यानी वेट्यूंग योंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुश्मनों को भगाने वाला पत्थर।
इन लोकल डायलेक्ट मीनिंग द स्टोन दैट चेज अवे द एनिमीज। इवन टुडे विलेज फोक्स ऑन द वे टू द फील्ड्स और ऑन हंटिंग्स एंड फिशिंग ट्रिप्स सीक सक्सेस एंड गाइडेंस बाय अटरिंग पो बू टू द स्टोन्स एंड दे शार्पन देयर डाउज और स्पीयर्स ऑन द स्टोन्स बिलीविंग दैट दे आर रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली।
आज भी गांव के लोग खेतों में या शिकार और मछली पकड़ने जाते समय उन्हें विश्वास है कि हमेशा उसी प्रकार की शक्ति उनके साथ रहेगी।
द विलेजर्स ऑल्सो इन्वोक गुड वेदर बाय प्लेसिंग लीव्स ऑन द स्टोन्स। विद डेनलैंड असुन्यू फॉर आकाशवाणी न्यूज कोहिमा।
और अब आइए चलते हैं मणिपुर की ओर। आज हम आपको मणिपुर के पारंपरिक धान रोपाई उत्सव पावकी के बारे में बता रहे हैं, जो पौमई जनजाति का त्यौहार है। मणिपुर के सेनापति जिले में रहने वाले लोग इसे मनाते हैं और आमतौर पर ये त्यौहार हर साल मई के महीने में ही मनाया जाता है। मणिपुर का ये एक तरह से पर्यटन त्यौहार भी कहा जा सकता है। हमारे इम्फाल संवाददाता जे थोकचोम ने हमें बताया कि पिछले सप्ताह बुधवार से शुक्रवार तक सेनापति जिले के पुरुल गांव में इसे मनाया गया।
पारंपरिक धान रोपाई उत्सव पावकी पौमाई जनजाति का त्यौहार है, जो मणिपुर के सेनापति जिले में रहते हैं और आमतौर पर यहाँ त्यौहार हर साल मई में मनाया जाता है। मणिपुर का यह पर्यटन त्यौहार पिछले सप्ताह बुधवार से शुक्रवार तक सेनापति जिले के पुरुल गांव में मनाया गया। त्योहार के पहले दिन जानवरों को कटा गया और सभी ग्रामीणों के लिए दावत की तैयारी की गई। त्योहार के इस पहले दिन को रनायू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है काटने का दिन। त्योहार में शामिल होने के लिए आए रिश्तेदारों और दोस्तों को भोजन देने के लिए पौमाई जनजाति के हर परिवार कम से कम 50 से 60 किलोग्राम माछ और मछली तैयार की जाती है। तौपायु त्योहार का दूसरा दिन है और इस दिन ग्रामीण रोपाई के लिए धान के पौधों को इकट्ठा किया जाता है। रात में नागा कुश्ती प्रतियोगिता पौमाई जनजाति के ग्राम प्रधान के आंगन में होती है। त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा दिन है, जिसे खनायु के नाम में जाना जाता है। त्योहार के इस आखिरी दिन लगभग सभी खेतों में रोपाई की जाती है और प्रत्येक ग्रामीण धान की रोपाई में शामिल होता है। इस दिन सभी धान के खेतों का दौरा करते हैं और रोपाई देर शाम तक जारी रहती है। ग्रामीण भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं और त्योहार तीसरे दिन संपन्न होता है। इस वर्ष पौकी त्योहार को मणिपुर राज्य पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया था और यह त्योहार मणिपुर के पर्यटन महोत्सव का एक हिस्सा बन गया है। तीन दिवसीय महोत्सव के दौरान युवाओं के स्वदेशी खेलों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। आकाशवाणी समाचार इम्फाल से जे थोकचोम।
और आइए अब यहाँ कुछ देर रुक कर सुनते हैं मणिपुर का एक सुंदर सा गीत। देश के कई हिस्सों की तरह ही पूर्वोत्तर में भी प्राकृतिक रंगों और रंगों के साथ ही पारंपरिक हथकरघा बुनाई एक पुरानी प्रक्रिया या कहें परंपरा रही है। और अच्छी बात तो ये है कि आजकल भी बाजार के लिए इन उत्पादों को उसी तरह से बनाने का काम अभी भी जारी है, ताकि लोग इसे नए नए रूप नए नए डिजाइन में देखकर पसंद करें। असम घाटी के किनारे कुछ जो क्षेत्र हैं, उन्हें छोड़कर नागालैंड राज्य का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। हाथ से बुनाई की कला भारत और विशेष रूप से नागालैंड में और उस पर भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की नागा महिलाओं के बीच आज भी बहुत लोकप्रिय है। नागालैंड के शॉल सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिनमें तीन या उससे कुछ अधिक रंगों के अलग अलग बुने गए टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर रंगों का मिलान करते हुए उनको एक साथ सिल दिया जाता है और सिलने के बाद बेहद मनमोहक और आकर्षक दिखाई देता है। सेमा नागा लोगों के बीच व्यापक रूप से पहने जाने वाला वस्त्र है एखुम। ये तीन या चार लाल पट्टियों वाला एक काला कपड़ा होता है। इसके अलावा ये योद्धा आई की फी नाम का एक वस्त्र भी पहनते हैं, जिसे नियमित अंतराल पर 9 सफेद पट्टियां बनाई जाती हैं और ये भी रंगों की छटा के साथ बेहद आकर्षक दिखाई देता है। नागालैंड के फेक जिले के जापामी गांव हम आपको लिए चलते हैं। नदी, झील, पहाड़ और मनमोहक वादियों में बसे खूबसूरत गांवों के साथ ही यहाँ प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा आप यहाँ नागालैंड की लोक संस्कृति को बेहद करीब से भी देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा चुभने वाले बिछुआ पौधे के धागों से बनी बुनाई की एक सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे कहते हैं थेवो नांग। थेवो नांग का अर्थ है बुनाई। कोहिमा से हमारी संवाददाता आसोनुमा ने हमें बताया कि थेवो नांग बिच्छू जैसे चुभने वाले पौधे के धागे से बुनी गई सदियों पुरानी प्रथा है। थेवो नांग बुनाई का ज्ञान अभी भी गांव के बुजुर्ग महिलाओं की स्मृति में बना हुआ है और आज भी जापामी गांव की महिलाएं सबसे बेहतरीन और मुलायम थेवो बुनाई का काम करती हैं। पूर्वोत्तर का समूचा इलाका हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। कोई भी जगह अब दूर नहीं, तो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें। आप यहाँ पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं और साथ ही आप पूर्वोत्तर में अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल को देखेंगे और उसे महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर। अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। तो अब अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।